हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजवीर इस बात से खुश था कि जोया ने उसे कम से कम अपने काम के लायक तो समझा था, वरना उसे लगता रहता था कि अरमान ठाकुर के बाद अब राजवीर सिंघानिया की बारी आएगी और जोया उसे कुछ ना कुछ करके सजा देगी। लेकिन उसने ये सोच पूरी तरह त्याग दी थी। वो इसी बात की खुशी मना रहा था कि जोया जल्द ही उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी, क्योंकि अगर जोया उसे पसंद नहीं करती तो इतना बड़ा काम क्यों सौंपती। राजवीर सिंघानिया से मिलने के बाद जोया जल्दी ही होटल की ओर रवाना हुई। जैसे ही वो होटल में पहुंची, वो हैरान रह गई। होटल के बाहर काफी सारे मीडिया वाले खड़े थे। इतने सारे मीडिया वालों को एक साथ देखकर जोया की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो अपने स्टाफ से साफ साफ कह रखा था कि वो किसी भी मीडिया में नहीं आना चाहती, तो फिर ये इतने सारे मीडिया वाले यहाँ अचानक क्यों मौजूद थे? जोया का दिमाग सोचने पर मजबूर हो गया। मगर इससे पहले कि जोया की कोई फोटो क्लिक हो पाती, रोहित ने सब कुछ मैनेज कर लिया था। उसके बॉडीगार्ड्स ने सभी मीडिया वालों को वहां से भगा दिया था। लेकिन जोया ये जानना चाहती थी कि आखिरकार इस हरकत के पीछे किसका हाथ हो सकता है। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मीडिया वाले अपने आप तो यहाँ नहीं आ सकते। जरूर किसी ने इन्हें टिप्स दी होगी कि विदेशी CEO इस वक्त इस होटल में मौजूद है। जोया होटल के पीछे वाले रास्ते से अंदर चली गई। वहां चांदनी और राजा भी हैरान थे। चांदनी ने जोया को देखते ही कहा, मैडम, हमें इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता कि ये मीडिया वाले यहाँ कहाँ से आ गए हैं। प्लीज आप हम पर किसी भी चीज को लेकर शक मत कीजिएगा। चांदनी ने बिना किसी सवाल के अपने आप ही सफाई पेश कर दी थी। जोया वैसे भी उन लोगों पर कोई शक नहीं कर रही थी। जोया ने कहा, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने भी ये हरकत की है, मेरे आदमी उसका पता लगा ही लेंगे। ऐसा कहकर जोया अपने कमरे की ओर जाने लगी। जैसे ही जोया अपने कमरे में गई, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। जोया हैरान हुई, लेकिन जब उसने अपने आसपास एक जाना पहचाना परफ्यूम सूंघा तो ऑटोमेटिक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहां कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौर था। अबीर आज दिन में ही वहां आ गया था। जोया को तो यकीन था कि अबीर जरूर रात में उसके पास आएगा, लेकिन आज वो दिन में आ गया था। ये देखकर जोया मुस्कुराने लगी। जोया की मुस्कान देखकर अबीर ने उसके गाल पर किस किया और बोला, जब से मैंने हेड कमांडर शमशेर सिंह का प्लान सुना है, तब से मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और सीधा यहाँ दौड़ा दौड़ा आया। तब जोया को सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर उसका पति यहाँ क्यों आया था। तब जोया ने अपने पति के गले में अपने हाथों का हार डालते हुए कहा, जब आप सब कुछ जान ही चुके थे तो फिर आपको आने की क्या जरूरत थी? वैसे भी 2 दिन का काम रह गया है, मैं खत्म करके आ जाती। जोया की बात सुनकर अबीर मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ मेरी बीवी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है, इसीलिए मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ, तुम्हारी मदद करने नहीं। ऐसा कहकर उसने अपने होंठ जोया के होंठों पर रख दिए और जल्द ही वे दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। कुछ ही देर में उनकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वहीं दूसरी ओर अरहम ठाकुर बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसे लगता था कि अब तक हर न्यूज़ चैनल पर हर जगह जोया के बारे में खबर दिखाई जा रही होगी, क्योंकि अरहम ठाकुर ने ही मीडिया को टिप दी थी कि विदेशी CEO कोई और नहीं बल्कि जोया है, और जोया वही लड़की है जो कभी अरमान और अरहम ठाकुर की मिस्ट्रेस हुआ करती थी। अरहम ने जोया को एक बहुत ही गंदी गाली के साथ इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया था। अरहम ठाकुर ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर एक बार जोया की ये हॉट न्यूज़ मार्केट में और सब न्यूज़ चैनल पर आ जाए तो जोया की पावर अपने आप कम हो जाएगी और फिर देश की सरकार खुद उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि अरहम ठाकुर नहीं चाहता था कि जोया ज़्यादा दिन यहाँ रहे। अपने भाई और बहन की हालत देखकर अब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। रह रहकर अरहम ठाकुर को यही लग रहा था कि हो ना हो जोया कुछ दिन में उसकी भी जान ले लेगी और सबको मारकर यहाँ से चली जाएगी। इसीलिए वो मीडिया के जरिए जोया को यहाँ से बाहर भेजना चाहता था। इसीलिए उसने अपने और अरमान के रिश्ते की एक हॉट खबर मीडिया तक पहुँचा दी थी कि विदेशी CEO पहले एक मामूली लड़की थी और इतना ही नहीं, वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन ठाकुर की मिस्ट्रेस हुआ करती थी। लेकिन जोया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मीडिया को खुद तक पहुँचने ही नहीं दिया। अरहम ठाकुर नहीं जानता था कि जोया के खिलाफ इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। उसका एक भाई तो बेड पर था, बहन भी बेड पर थी, अब केवल अरहम ठाकुर ही ठीक ठाक सही सलामत बचा हुआ था। वहीं अरमान ठाकुर जो बेड पर था, उसके जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हो रहा था, क्योंकि इतने दिन तो उसे ठीक होने में कभी नहीं लगते थे, लेकिन इस बार ज्यादा ही दिन लग गए थे। ऊपर से ताज़ा ताज़ा जख्म उसे कल रात ही लगा था जब जोया ने अपने आदमियों के जरिए उसके सर पर गन मारवाई थी। अरमान ठाकुर जल्द से जल्द ठीक होकर बेड से उठना चाहता था, क्योंकि वो एक बार फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जोया को फोर्सफुली अपने पास रखना चाहता था। महर ठाकुर, जिसके हाथ में प्लास्टर था, अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, इसीलिए अरहम ठाकुर ने महर को डिस्चार्ज करके अपनी माँ गजाला जी के साथ घर भेज दिया था। महर ने अब जल्दी ही ऑफिस का काम संभालने का डिसीजन ले लिया था। वो जानती थी कि उसका भाई अभी ज्यादा बीमार है, इसीलिए अब उसके एब्सेंट में उसे ही ऑफिस का काम संभालना होगा। महर को डिस्चार्ज हुए अभी 2 घंटे से कम समय ही हुआ था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी के आने की डोरबेल बजी। महर सोचने लगी कि इस वक्त कौन आया होगा। अरहम ठाकुर तो अस्पताल में अरमान ठाकुर के पास रुका हुआ था और कोई उनके रिश्तेदार भी नहीं था जो इस वक्त उसके घर पर आ जाए। तभी महर के एक आदमी ने दरवाजा खोला। जैसे ही महर ने दरवाजे पर राजवीर सिंघानिया को देखा, उसकी हैरानी के मारे बहुत बुरा हाल हो गया।